शांति। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा और बार बार कहते भी रहते हैं, बच्चे बाप समान बनना है। बाबा से हम सुनते भी रहते हैं और क्लासेस में भी सुनते हैं, बाप समान बनना है, पुरुषार्थ भी करते हैं। लेकिन बाबा ने आज बाप समान बनने के साथ साथ एक ऐसी युक्ति बता दी है जिससे बाप समान बनना सहज हो सकता है। बाबा ने कहा बाप समान बनना है तो बाबा ने तुम बच्चों को एक टाइटल दिया है, त्रिकालदर्शी। साकार बाबा मम्मा को हमने देखा कि तीनों कालों को सामने रखते हुए आदि मध्य अंत के बारे में और दूरादेशी होकर के हर पुरुषार्थ करते रहे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को भी बाप समान बनना है और साथ साथ त्रिकालदर्शी बन करके पुरुषार्थ करना। दूसरी बात बाबा ने कही कि तुम बच्चों को कौन सी बात पक्का निश्चय, कौन सी बात सर्टन है, वो है कि तुम बच्चे ही विश्व का राज्य भाग्य पाने वाले हो। ये पक्का है, ये सर्टन है। बाबा ने कहा कि निष्काम सेवाधारी केवल एक बाबा है। दुनिया में कोई कितना भी सेवा करता है, कर्म का फल उसको मिलता ही है और मिलना ही है। बाबा जो आकर के सेवा करते हैं और कोई भी प्रकार की सेवा कर रिटर्न के बाबा इच्छा नहीं रखते। बाबा को क्या इच्छा है? बाबा आते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद परम धाम मुक्ति धाम में जाकर के विश्राम करते हैं और बाबा देखते हैं कि मेरे सब बच्चे आराम से रहे, खुशी से रहे। तो निष्काम सेवाधारी एक ही बाप है। फिर बाबा ने कहा कि ये जो कर्म भोग आता है, ये कर्म भोग के कारण भी कई बहुत डिस्टर्ब होते हैं ना। बाबा कहते ये माया रावण की देन है, विकर्म किए तो ये कर्म भोग आया। अभी बाबा की याद से ये कर्म भोग को भी समाप्त करना है और पवित्र बनना है। अब हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 26 जून 2026, 26/6/26। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। मीठे बच्चे इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है, बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। आज का प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उसका उत्तर है, ड्रामा अनुसार सर्टन है कि नई दुनिया स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कौन सी? कि श्रीमत पर हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। क्या बाबा कहते हैं? बच्चे भी कहते हैं ओम शांति और बाबा भी क्या कहते हैं, ओम शांति। बच्चे कहते हैं, बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते। कितनी खुशी, बाबा मिला और स्वर्ग का मालिक बनाता है। तो बच्चे कहते, बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं, बच्चे मन मना भव, स्वर्ग का मालिक बनना तो क्या करो, बाबा को याद करो। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है। लोग पूछते हैं, यहाँ क्या मिलता है, तो हमको पता है कि विश्व की बादशाही मिलती है। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहते हैं, हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते। इतने नशे से कहते हैं कि बाबा हमें क्या दे रहे, हम क्यों जाते हैं, हम जाते हैं राजाई पद को प्राप्त करने के लिए। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहते हैं, हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और तो कोई बना न सके, विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही हैं। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो ही नहीं सकता। अब बाबा तो विश्व का मालिक नहीं बनता, बच्चों को बना देता है। बाबा कभी कभी बहुत प्यारा सा उलहना भी देते हैं बच्चों को। बाबा बच्चों को कहते, तुम बच्चे जाते हो सतयुग में और मेरे को भूल जाते और मुझे निमंत्रण भी नहीं देते। तो इसके लिए क्या किया था, दादियों के टाइम की बात है, एक बार बहुत सुंदर निमंत्रण बना करके बाबा को भेजा, बाबा आप हमारी राजधानी में आना। तो बाबा भी बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया, बच्चे जब आप अपनी राजधानी में जाओगे ना, वहां से निमंत्रण देना, ऐसा नहीं कि यहाँ से दो। फिर बाबा ने फिर दोबारा मुरली के अंदर कभी कभी आता है ना, फिर दोबारा निमंत्रण दिया गया। तो बाबा ने क्या कहा, ड्रामा अनुसार बाबा को अपने बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है, और बाबा ड्रामा अनुसार वो दुनिया में नहीं आते हैं लेकिन बच्चों को देख के खुश होते हैं। तो बाबा कहते हैं, हम बाप दादा से विश्व का मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बना न सके, विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही हैं। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता, तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते। कितना प्यार से बाबा बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम्हारा ही विश्व, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता है। देखो कई बार माँ बाप होते हैं बच्चों को इतना ऊंच बना देते, कहते बच्चे आप बन गए लेकिन हमारा ऐसा बनने का नहीं है। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता है, ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। जो भी सेवा करते हैं हर एक को फल मिलता है, हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में वह किसी भी प्रकार से कोई कुछ भी करता है, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। सोशल वर्कर सेवा करते, मान सम्मान कितना उनका होता है ना, तो बाबा कहते सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है, कई सोशल वर्कर गवर्नमेंट की तरफ होते हैं तो उनको भी नौकरी मिलती है, पैसा मिलता है, गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाप कहते हैं, मैं एक ही निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। देखो कितनी बड़ी बात, मैं नहीं बनता हूँ, बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे, मैं अपने निर्वाण धाम व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। बाबा क्या करते हैं, बच्चों को सुख दे और 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनाते। तो बाबा कहते हैं, बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे, मैं अपने निर्वाण धाम में वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं ना, बच्चों को सब कुछ दे जाकर के सत्संग आदि करते हैं। दुनिया में आजकल तो कम ही करते हैं, पहले जमाने में करते थे ना। तो बाबा बताते हैं मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं कि वह मुक्ति का रास्ता बताए। अब तुम बच्चे जान गए हो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता, और कोई मनुष्य मात्र किसको बता नहीं सकते, वह किसको सदगति भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, खुद भी नहीं जानते तो कैसे देंगे। वह किसको सदगति नहीं दे सकते, अपने को नहीं दे सकते तो औरों को कैसे देंगे। जो अपने को नहीं दे सकते तो अपने को दे फिर तो औरों को देंगे। पहले अपने को सदगति मिले, खुद रास्ता मिले, तब तो दूसरों को बताएंगे ना। तो बाबा कहते पहले अपने को दे फिर औरों को भी दे सके। बाप आते ही है परम धाम से, वह वहां का रहने वाला है, तुम बच्चे भी वहां के रहने वाले हो। कहां के? परम धाम के। बाबा भी परम धाम के रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं, तुम बच्चे भी वहां के रहने वाले हो। तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार आना पड़ता है। तुम बच्चे अनेक पाठ बजाते लेकिन बाबा को भी एक बार आकर पाठ बजाना पड़ता है। हम बाबा को भी एक बार यहाँ आना है, किस लिए? तुम बच्चों के लिए जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जरूर नरक का विनाश भी होना ही है। अभी तुम जान गए हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। बाबा क्यों पक्का करा रहे हैं, एक है मनुष्य से देवता बनना। बाबा फिर से कहते मीन्स पहले भी बने थे, पहले देवता थे, अब ऐसे मनुष्य बन गए हो, फिर से बन रहे हो। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते। पक्का है ना, बाबा के पास आते थे ना तो बाबा पक्के पक्के बच्चों को समझ आते थे। कई नए नए बच्चे होते थे ना तो बाबा उनको पूछते थे, बाबा के टाइम पर ब्राह्मणिया टीचर उनको ले आती थी और उनको पक्का करके आती थी। बाबा आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, पहले कभी मिले हो तो क्या कहना, हम 5000 वर्ष पहले कल्प पहले मिले थे। तो बाबा के पास आते थे, बाबा को देखते तो सब कुछ भूल जाते थे। बाबा पूछते थे बच्चे पहले कभी मिले हो तो वो कहते नहीं बाबा पहले कभी नहीं मिले। फिर कहेंगे, बाबा कहते अच्छा बच्चे याद करो पहले कभी मिले हो। बाबा पहले तो हम नहीं मिले, पहली बार मिल रहे हैं। फिर बाबा कहते याद है पहले का? हाँ हाँ बाबा, हमको हमारी टीचर ने बताया था बाबा ये प्रश्न पूछेंगे, आप ये जवाब देना। तो बाबा हमेशा कहते थे तोते को पढ़ा के आइए। तोता क्या करता है, नल पे बैठ जाता है, बोलता रहता है गंगाराम नल पे मत बैठना। तो बाबा देखते थे कि किस प्रकार से बच्चों ने ज्ञान के अंदर वो पक्का निश्चय हुआ है। अच्छा, जो कहते हम कल्प पहले मिले थे वो हाथ खड़ा करो भट्टी वाले। पक्का? पक्का है ना, ऐसा नहीं कहेंगे बाबा ने कहा था हमने वही बोल दिया। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वर्षा पाने के लिए। पतित पावन उनको कहा जाता है, नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखलाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तो बाबा की तेज से तो मैं कर नहीं सकता ना, ब्रह्मा द्वारा कराता हूँ। अब वह धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता। बाबा क्या करते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को सतयुग में भेज करके बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी में जनसंख्या वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। क्यों? स्टार्टिंग से है ना, सतयुग से है, तो उसकी जो जनसंख्या वो सबसे जास्ती होनी चाहिए। परंतु बाबा राज बता रहे हैं 5000 वर्ष से उनकी वृद्धि होती रहती है, बाकी और तो आते ही हैं। 2500 वर्ष के बाद इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय के बाद बोधी धर्म आता है। पहले इस्लाम आता, फिर बोध आता है ना, तो बाबा कहते फिर थोड़ा उनका कम होना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं तो उनों में भी थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बोधी आदि पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते। बाबा राज बता रहे कैसे हर एक अपने अपने स्टेज से क्रॉस करता, पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर तमो, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते। ये भी हिसाब है, जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उनको ख्याल करना पड़े। बाबा कहते उनको विचार सह मंथन करना है, ख्याल करना है किस प्रकार से ये साइकिल चलता है। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है, उस चाइना की संख्या जो है ना बहुत ज्यादा है, परंतु उनको सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। बाबा कहते बल संख्या ज्यादा है, लेकिन उनको सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है, परंतु उनको सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उनको डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए हैं, तो इस समय उनकी संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु क्यों नहीं है, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, अभी विदेशों में अपने बहुत से सेंटर्स हैं जहाँ पर अनेक धर्म के बच्चे आते हैं, बाबा के बच्चे हैं, कई तो आकर के योग भी करते हैं। तो बाबा कहते और धर्मों में कन्वर्ट हो गए ना, फिर धीरे धीरे वो अपने देवी देवता धर्म में आते हैं। पहले पहले मुसलमान बन गए, फिर बोधी भी बहुत बने हैं, यहाँ बोधी भी बहुत हैं, तो क्रिश्चियन तो बेशुमार है, क्योंकि हिस्ट्री को जानते ना कैसे क्रिश्चियनिटी को उन्होंने अपना बनाया, कैसे लोगों को क्रिश्चियन बनाया, तो संख्या बढ़ती गई ना। तो क्रिश्चियन तो बेशुमार है, देवी देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर ब्राह्मण धर्म हम कहें तो हिंदुओं की लाइन में डाल देते। जब आते ना वो जनगणना वाले नोट करने आते हैं तो पूछते आपका धर्म कौन सा है, हमको कहते ब्राह्मण धर्म है, कहेंगे नहीं नहीं ठीक है हिंदू धर्म है, ठीक है हिंदू धर्म है। तो उनको पता ही नहीं है कि ब्राह्मण भी धर्म है, ब्राह्मण को हिंदू कॉलम में डाल देते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर। हम ब्राह्मण आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर। अब तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर, ये भी तो समझ होनी चाहिए। धर्म गाये तो जाते हैं, यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले जाते हैं, वो आदि सनातन देवी देवता धर्म के, लेकिन भूल गए ना, फिर अपने को हिंदू कह देते हैं। कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है, भारतवासी पहले पहले आर्य, आर्य उसको कहते जो सुधरे हुए सिविलाइज है। तो बाबा कहते भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अन आर्य बन गए। पहले कहाँ इतने सिविलाइज थे, इतने बहुत दैवी गुणों से संपन्न थे, अब तो उनकी हालत क्या हो गई है। तो बाबा कहते हैं अब अन आर्य बन गए, कोई भी अकल नहीं है, जिसको जो आता है वह धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते ताल तालियां भी निकलते हैं, नए का थोड़ा मान होता है। अब आप बाबा क्यों बता रहे हैं ये पत्ते निकलते हैं ताल तालियां निकलती हैं, जो नए नए होते हैं थोड़े टाइम के लिए उनका भी मान सम्मान होता है, लेकिन सबसे पुराना क्या है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को अभी तुम बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा बता रहे हैं कि अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा, कंडीशन, जितना जास्ती याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा, और तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ और कौन सा वर्षा मिलता है, बाबा ने कहा लौकिक बाप से धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ बाबा बता रहे पतित बनने का भी वर्षा मिलता। जब तक पतित नहीं बनेंगे तब तक लौकिक माँ बाप को भी शांति नहीं। तो बाबा कहते हैं एक तो धन मिला, प्रॉपर्टी मिली, फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। वह लौकिक बाप और ये परलौकिक बाप और ये है बीच में, कौन, लौकिक बाप अलग, परलौकिक बाप शिव बाबा, और बीच में कौन है, ब्रह्मा बाबा। वह लौकिक बाप और ये अलौकिक बाप और परलौकिक बाप, तीन बाप है ना। तो बाबा कहते हैं वह लौकिक बाप और वह परलौकिक बाप और ये बीच में है अलौकिक बाप। इसमें बाबा के बात से आते हैं, निर्मल शांता दादी को बहुत नशा रहता था कि एक में तीन है, लौकिक भी वही है, अलौकिक भी वही है और परलौकिक भी उसमें, हम सबको दो है, लेके उनके क्या कहेंगे, हम सबको तीन है। दीदी को होता था कि मेरे तो एक में ही तीन है, तो दीदी को बहुत नशा रहता था। तो बाबा कहते हैं वह लौकिक बाप, वह परलौकिक बाप और ये है बीच में अलौकिक बाप, इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया है, लौकिक भी हो गया अलौकिक भी हो गया, बीच में शिव बाबा का रथ भी हो गया। तो शिव बाबा ने क्या किया, इसको दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको तो कितनी गाली खानी पड़ती है। आप ब्रह्मा बाबा के बारे में सुना है, बाबा की जीवन इतनी ऊंच महान थी, लोग कितना रिस्पेक्ट करते थे, जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो ब्रह्मा बाबा को कितनी गाली खानी पड़ी। शिव बाबा कहते मुझे तो कोई गाली नहीं खानी पड़ती, इसको ही सब खाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती, कहते ना श्री कृष्ण को गाली में, ये सारी गाली किसको मिली, ब्रह्मा बाबा को, बीच में फंसा है ये। अब कभी को ब्रह्मा बाबा कहते देखो शिव बाबा ने बीच में मेरे को फंसा दिया, आज शिव बाबा भी कह रहे देखो बीच में ये फंसा है, बीच में फंसा है ये। कहती है ना चलते चलते ब्राह्मण फंसा। बाबा कहते ना मन न चित, पता नहीं कैसे चलते चलते बाबा ने फंसा लिया। कहते हैं ना चलते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए ये फंसा है। शिव बाबा जी को क्या बता रहे, गाली खाने के लिए इसको फंसाया है, खुद तो न्यारा और प्यारा ब्रह्मा को फंसा दिया, गाली खाने के लिए ये फंसा है। अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। ये किसको पता नहीं कि शिव बाबा इनमें आकर के पतितों को पावन बनाते हैं, पतित बनने पर भी मार खाते। अब बाबा ने प्रवेश किया, पावन बनाने का रास्ता बताया, तो बाबा को कितनी, ब्रह्मा बाबा को कितनी गाली खानी पड़ी, कितना अपमान सहन करना पड़ा, और जो पावन बनने के लिए पुरुषार्थ किया बहनों ने उन्हें भी मारे खानी पड़ी। पतित बनने पर भी मार खाते। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको वापिस ले जाने, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर होना है, विनाश बिगर सुख शांति कैसे हो। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ करते, कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज आती है, बारिश नहीं आती, लड़ाई लगती है, यज्ञ करते शांति के लिए। तो बाबा कहते हैं जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं कि लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे, सब स्वर्ग में तो नहीं जाएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे। स्वर्ग में कौन जाएंगे, कौन जाएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही ना, हम तो नहीं जाएंगे, है ना। ऐसे बाबा बोलते कौन जाएंगे, फिर से बताओ, बोलो हम जाएंगे, हम ही पुरुषार्थ करें। ऐसा नहीं है, बाबा तो बच्चों को कह रहे हैं लेकिन हमको क्या देखना है। तो बाबा कहते हैं नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे, सब स्वर्ग में तो नहीं जाएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम में। ये किसको भी पता न होने के कारण कितना डरते हैं कि हम कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे। तो बाबा कहते डरते रहते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस आदि करते हैं, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि सुख धाम और शांति धाम की स्थापना कैसे हो रही है, विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। स्थापना हो भी जाए लेकिन जब तक ये पुरानी चीजें न बदलें तब तक तो स्थापना कैसे होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। वह तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, शांति कैसे स्थापन हो, तो कोई थोड़ा बहुत अच्छी राय दे देता है तो उनको पीस प्राइज दे देते, पर स्थापन तो हुई नहीं ना, उसने केवल राय दिया। लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो शांति कैसे स्थापन होगी। वह तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं, सभी कहते हैं वननेस हो, मीन्स एक हो, सब एक हो जाए, आपस में लड़े झगड़े नहीं। अनेक होते हैं तो झगड़ा होता है ना, सभी कहते वननेस हो, एक ही बाप की मत से हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाए। अब कैसे हो सकती है, एक शिव बाबा की मत से हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, तब जाकर के वननेस होगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। आजकल तो कलयुग दुनिया में एक ही बाप के बच्चे छोटी छोटी बात पर लड़ते ना, तो बाबा कहते हैं एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये तो सतयुग में ही था, वहाँ कोई भी आपस में लड़ते नहीं। ये तो सतयुग की बात हो गई, यहाँ तो है ही कलयुग। बरोबर सतयुग में देवताएं थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी वह पता ही नहीं पड़ता। अब सतयुग में थोड़े होंगे, उनको ये भी पता नहीं है कि इतने सब मनुष्य मात्र कहाँ है, बाबा कहते बाकी सब आत्माएं कहाँ थी, किसी को कुछ पता नहीं पड़ता है। अब तुम समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में था, वहाँ सुख शांति थी, ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है कैसे? नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था, ये ज्ञान किसको है नहीं। सतयुग की महिमा करेंगे, राम राजा राम साहूकार बोलते रहेंगे, लेकिन कैसे था कौन थे वो कुछ भी नहीं जानते, ये ज्ञान किसको है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं, जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। क्या बनना है? बाप की महिमा जैसे बाबा वैसे तुमको बनना है, इसलिए बाबा बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाबा कहते हैं इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं, जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ अब अंतर, जैसे बाबा है वैसे बच्चों को बनना, लेकिन बाबा कहते सिर्फ एक बात है जो बाबा अपने पास रहते, कौन सी? सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती। बाबा से चाबी मांगेंगे, बाबा कहते चाबी मैं कभी नहीं दूंगा। क्यों? बाबा कहते ये चाबी तो मेरे को द्वापर में भी काम आती है, भक्ति में भी काम आती है, अगर बच्चों को दे दो तो क्या करेंगे, ज्ञान योग पढ़ाई सब बंद, खेल कूद करते रहेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में भी तो मुझे काम करना पड़ता है ना, नोदा भक्ति वालों को साक्षात्कार कराना पड़ता है, जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना भी पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहती है ना अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, शुरू शुरू में बाबा ने यज्ञ की स्थापना में दिव्य दृष्टि का बहुत पाठ चला, फिर धीरे धीरे बाबा ने ज्ञान सुनाना और ज्ञान की गहराई में जाने का पक्का कराया। अब बाबा ने कहा ये पार्ट को कम करके बाबा कहते बाप समान बनो और हर ज्ञान की हर गहराई में जाकर के उसका विचार संमंथन करो। तो बाबा कहते हैं अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी की स्थापना भी जरूर होनी है। बाप ने कल पहले जैसे समझाया था वैसा ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, जब देवता बनते हैं तो आश्रय सृष्टि का विनाश जरूर होगा। जब देवता बन जाते हैं पवित्र बन जाते हैं तो पति चीजें नहीं रहती हैं। तो बाबा कहते हैं जब देवता बनते हैं तो आश्रय सृष्टि का विनाश जरूर होगा, चारों तरफ हाहाकार मचना है। ये बाबा ने कितने वर्ष पहले बताया था, उस समय तो इतना था भी नहीं, अभी तो बढ़ता ही जाता ना, तो बाबा ने तो पहले से ही बता दिया था। तो बाबा कहते चारों तरफ हाहाकार मचना है, बुद्धि समझ सकती है, नेचुरल क्लेमिटीज भी आनी है, मूसलाधार वर्षा भी होनी है। हम आपको बताए कई देशों में भूकंप ये वो आ रहे हैं। कल हमारे पास समाचार आया कि वेनेजुएला में बहुत बड़ा भूकंप आया और वहां से सेंटर की बहन ने सबको एक ईमेल भेजा है कि बाबा के बच्चे सेफ हैं, और काफी नुकसान तो हुआ है, बाबा के बच्चे सेफ हैं क्योंकि सबकी दुआएं और सबके शुभ वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं, हालांकि थोड़ा डेंजर तो है लेकिन बाबा के बच्चे वहां पर सेफ हैं। कभी कहां नेचुरल क्लेमिटीज तो आती रहती है, साउथ अमेरिका में है वेनेजुएला। तो बाबा कहते हैं नेचुरल क्लेमिटीज भी आनी है, मूसलाधार वर्षा भी होनी है, इन सब का विनाश हो जाए तब तो सतयुग की स्थापना हो, पांच तत्वों को खाद भी मिल जाए। जब विनाश होगा, सारी प्रकृति ये चीजें एकदम धरती में समा जाएंगी तो धरती भी उपजाऊ बन जाएगी। तो बाबा कहते पांच तत्वों की खाद मिल जाएगी। इस धरती की खाद तो देखो कितनी मिलती है। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सब स्वाहा हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग बनाते, बहुत बड़ा शिव बाबा का लिंग बनाएंगे, फिर छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर सब मिटा देते। भक्ति में क्या पूजा करते ना, बहुत बड़ा शिवलिंग बनाएंगे, फिर छोटे छोटे शालिग्राम बनाते, फिर सबको मिट्टी में मिला देते। अब बाबा क्या बता रहे हैं, शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बना के पूजा करके फिर मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते हैं। कहाँ कहाँ पर ऐसे करते, रोज शिवलिंग बनाएंगे, रोज शालिग्राम बनाएंगे, पूजा करेंगे, फिर उसको मिट्टी में मिला देते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा भी सुनो, शिव बाबा के साथ जिन्होंने सर्विस की उनका भी ये हाल करते। सुना, आप सबकी पूजा करते हैं, आपकी यादगार में शिवलिंग बनाते हैं न जानने के कारण, फिर आप सबका जो शिवलिंग बनाए ना छोटे छोटे शालिग्राम उसको भी तोड़ देते हैं। बाबा कहते देखो जिन्होंने शिव बाबा के साथ सेवा की उनका भी क्या हाल करते, उनको पता ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी क्या हाल करते हैं। रावण की देखो हर वर्ष FG बनाए उनको जलाते हैं। दुश्मन की तो अब बाबा राज बता रहे, दुश्मन होता है एक दो बार उसका बुत बना के जला देते हैं, लेकिन रावण का क्या इतना बड़ा दुश्मन है, हर साल जलाते रहते हैं, हर साल जलाते हैं। दुश्मन की तो एक दो बार FG बनाए जलाते हैं, ऐसे नहीं वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। एक बार गुस्सा निकाल दो ना बाबा के, तो एक बार गुस्सा निकाल दो, एक बार जला दो, लेकिन वो कौन जलाएगा, बाबा के बच्चे एक ही बार जला देंगे ना, एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, इनका अर्थ कोई नहीं समझते हैं। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, कुछ भी समझते नहीं, फॉरेनर्स क्या समझेंगे। उनको जब ये कहानियां सुनाते ना कभी कभी उनको भी अजीब सा लगता है, क्या बताते, एक तरफ इतना पावरफुल मर्यादा पुरुषोत्तम और दूसरी तरफ ये हुआ। तो बाबा कहते वो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बहुत बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में तो होगा ही नहीं। अब रावण को अच्छी तरह से मारो, अच्छी तरह जीत पहनो, सतयुग में तो होगा ही नहीं, सतयुग में तो होगा ही नहीं। ये जो कर्म की भोगना बीमारी आदि होती है ये है रावण के का। सुना ना, कई आते हैं हमारे को, ये क्या होता है, बहुत आते हैं हमारे को, ये बीमारी हो गई बाबा को बोलो। अब बाबा जानते तो कर्म भोग है, ये तो कई जन्मों का हिसाब किताब है, तमो प्रधान प्रकृति है। तो बाबा कहती इन बातों में चिंता नहीं करो, देखो तो इतने आएंगे आएंगे, बस मेरा शरीर बीमार है, ठीक नहीं है, बाबा को बोलो। बाबा क्या कहेंगे, बाबा कहेंगे योग से ठीक करो ना, योग दवा और दुआ से ठीक करो। तो बाबा कहते ये रावण की देन है, कर्म भोग है। तो बाबा कहते हैं जो भी कर्म की भोगना बीमारी आदि है ये है रावण के कारण। रावण के कारण विकर्म किए तो वो भोगना भोगनी पड़ती है। रावण की प्रविष्टता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह कर्म विकर्म हो जाते हैं। सुख और दुख का ये खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला किसको भी पता नहीं है। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो कि लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे, जब छोटे छोटे बच्चे बड़ों को ज्ञान सुनाते ना, उनको सुनने का भी अच्छा लगता है, प्रभाव पड़ता है। तो बाबा हमेशा छोटे छोटे बच्चों को तैयार करते थे, कहते थे बड़े बड़े वीआईपीस को जाके ज्ञान सुनाओ। तो बाबा कहते तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो, ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे, संगम पर ये राजयोग सीख करके ये पद पाया है। बिरला को भी बाबा के टाइम पर बिरला जो है ना बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते थे, हर जगह पर लक्ष्मी नारायण के मंदिर चलते बनते ही रहते थे। तो बाबा हमेशा कहते थे बहने जाए बिरला को समझाएं कि ये लक्ष्मी नारायण कौन है। फिर आज बाबा ने क्या कहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी बिरला को जाकर समझाएं कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाए। बिरला को भक्ति में बहुत भावना थी, और खास करके लक्ष्मी नारायण के मंदिर, जगह जगह लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते थे। तो बाबा भेजते थे बहनों को, वो जाकर के उनको बताते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। तो आज बाबा बता रहे हैं बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता, राजाई तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया। आज के राजाएं जो देखेंगे ना, जो कलयुग के राजा हैं छोड़े बहुत बचे हैं, वो ताज नहीं पहनते, एक पगड़ी से डाल लेते हैं, ताज ही नहीं है, पगड़ी से डाल देते ना। तो बाबा कहते हैं राजाओं का ताज ही उड़ा दिया, धर्म शास्त्र सिर्फ चार हैं, धर्म शास्त्र सिर्फ चार हैं, गीता धर्म शास्त्र। बाबा बता रहे हैं जो मेन धर्म शास्त्र वो चार ही है, गीता धर्म शास्त्र है, जिससे तीन धर्म अभी स्थापन होते। ब्राह्मण कौन से तीन धर्म, ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय, ना कि सतयुग में। गीता शास्त्र से तीन धर्म कब स्थापन होते, संगम पर, ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय, ना कि सतयुग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, ये धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है बाइबल बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म अब फिर से दैवी धर्म की स्थापना करते, आदि सनातन धर्म से फिर से दैवी धर्म की स्थापना होती। आदि सनातन है देवता धर्म, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण के राज को अच्छी रीति समझ गए। अब बाबा बच्चों को पक्का कर रहे हैं तुम ब्राह्मण के राज को अच्छी रीति समझ गए हो। खुशी रहती है, किस बात की खुशी, कि हम ही जाकर के देवता बनेंगे। फिर बाबा कहते 100% पक्का है कि तुम ही देवता बनेंगे। खुशी भी रहती है जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं, अब अपना राज्य लेने के लिए क्या कर रहे हैं, है कोई लड़ाई, कर तो रहे ना, बैठे बैठे कर रहे हैं ना लड़ाई, माया से कर रहे हैं, लेकिन बैठे बैठे ही योग करते ही साइलेंस में बैठ करके अपना राज्य ले लेते हैं। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं, राजधानी स्थापन हो रही है, ये भी सर्टन है, एज सर्टन है। बाबा कहते हैं ये सर्टन है, होना ही है, और ये भी सर्टन है, डेथ भी होना है, विनाश भी होना है। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कलप कलप बाप से वर्षा लेते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कलप कलप बाबा से वर्षा लेते हैं, सर्टन है हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। परलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरा, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। आज का वरदान, पुराने संस्कारों रूपे। अब बाबा पुराने संस्कारों को क्या बता रहे? पुराने संस्कारों रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले सम्मान और संपूर्ण भव। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले बाप समान और संपूर्ण भव। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि के कयामत से पहले, बाबा क्या बता रहे हैं? बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि के कयामत से पहले अपनी कमजोरियां और कमियों की कयामत करो। सृष्टि की कयामत से पहले अपनी कमजोरियां और कमियों की कयामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान ना रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसी पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे सम्मान और संपूर्ण। स्लोगन, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। आज का व्यक्ति इशारा जो टाइटल चल रहा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देख करके भी घबराएंगे नहीं। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सूरत से सदैव संतुष्ट व प्रसन्न चित दिखाई देंगे। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। वे संतुष्ट मणि होने के कारण सदा हर्षित रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज तो अच्छा, आबू निवासी भाई बहने ध्यान देंगे। आज शाम को 6 बजे आबू निवासियों की क्लास सूरज भाई द्वारा ट्रेनिंग, ज्ञान सेवक की ट्रेनिंग सेक्शन रूम नंबर 3 में कराई जाएगी। तो सभी आबू निवासी भाई बहने ज्ञान सेवक में शाम को 6 बजे तक पहुंचेंगे। वहां के ट्रेनिंग सेक्शन हॉल नंबर 3 में बैठेंगे और क्लास के बाद वहां ब्रह्मा भोजन भी स्वीकार करेंगे। आबू निवासी भाई बहने ध्यान देंगे, आज शाम को 6 बजे आबू निवासियों के लिए, शाम को 6 बजे आबू निवासी भाई बहनों के लिए ज्ञान सेवक के ट्रेनिंग सेक्शन रूम नंबर 3 में सूरज भाई का क्लास है। उसके बाद वह ब्रह्मा भोजन भी स्वीकार करेंगे। ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे बट